संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 22 अक्टूबर 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। यूएन महासचिव की पुकार, आधी आबादी यानी महिलाओं को नहीं रखा जा सकता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विषयों से बाहर। तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के रास्ते से भटकी हुई है दुनिया। कोरोना वायरस महामारी से मारे गए स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 1,80,000 तक होने का अनुमान। और भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में दी गई खुराकों की संख्या हुई 1 अरब। हम आपको याद दिलाते चलें कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा है कि विश्व की आधी आबादी यानी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा विषयों से दूर नहीं रखा जा सकता। यूएन प्रमुख ने उन चुनौतियों से निपटने व खाइयों को पाटने पर जोर दिया है जो महिलाओं व लड़कियों की आवाज़ को बराबरी देने से रोकती हैं। महासचिव गुटेरेश ने महिलाएं शांति व सुरक्षा पर ऐतिहासिक प्रस्ताव 1325 के विषय में आयोजित बैठक के दौरान ध्यान दिलाते हुए कहा,
Too often, women remain on the periphery of formal peace processes, and they are largely excluded from rooms where decisions are made.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि अक्सर महिलाओं की मौजूदगी शांति प्रक्रिया की परिधि तक ही सीमित रहती है और उन्हें ऐसे स्थानों से दूर रखा जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं। आज महिलाओं का नेतृत्व एक मुहिम है, कल इसे एक मानक बनना होगा। हम मानवता के आधे हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विषयों से बाहर नहीं रख सकते। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। गौरतलब है कि प्रस्ताव 1325 में हिंसक संघर्ष की रोकथाम व निपटारे, शांति वार्ता, शांति निर्माण, शांति रक्षा, मानवीय कार्रवाई और हिंसक संघर्ष के बाद के हालात में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। प्रस्ताव में शांति व सुरक्षा बनाए रखने व उसे बढ़ावा देने के सभी प्रयासों में महिलाओं की समान व पूर्ण भागीदारी पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने कहा है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादन की जितनी मात्रा जरूरी है देशों की सरकारें उससे दोगुनी मात्रा में उत्पादन की योजनाओं पर काम कर रही हैं। बुधवार को जारी एक नई रिपोर्ट में ये निष्कर्ष सामने आया है। साथ ही यूएन पर्यावरण एजेंसी की एक अन्य रिपोर्ट में महासागरों और अन्य जल क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण की तेजी से बढ़ती मात्रा पर चिंता जताई गई है जिसके वर्ष 2030 तक दोगुना हो जाने का अनुमान है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस वर्ष की रिपोर्ट दर्शाती है कि तेल, गैस, कोयला यानी जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उत्पादक देश ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी पर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता फरहान हक।
The report also shows that countries have directed over $300 billion in new funds towards fossil fuel activities since the beginning of the COVID-19 pandemic, more than they have towards clean energy.
UN प्रवक्ता बता रहे थे कि COVID-19 महामारी की शुरुआत से ही देशों ने 300 अरब डॉलर की धनराशि जीवाश्म ईंधन गतिविधियों में निर्देशित की है। यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवंटित धनराशि से कहीं अधिक है। अगले 20 सालों में तेल और गैस उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है और कोयला उत्पादन में भी केवल मामूली कमी आने की संभावना है। दीर्घकालीन वृद्धि का ये रुझान पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक अन्य रिपोर्ट में प्लास्टिक को जलवायु समस्या करार दिया है। 2015 में प्लास्टिक से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 1.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था। 2050 में ये बढ़कर करीब 6.5 गीगाटन तक पहुंच जाने का अनुमान है। रिपोर्ट में प्लास्टिक उत्पादन और खपत में तत्काल कमी लाने, उसका फिर से इस्तेमाल किए जाने, संपूर्ण वैल्यू चेन में जरूरी बदलाव करने और बेहतर निगरानी प्रणाली की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता प्रसार को अहम बताया गया है ताकि वे जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को चुन सकें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुरुवार को कहा है कि कोविड 19 महामारी के कारण दुनिया भर में जनवरी 2020 से मई 2021 के बीच 80,000 से लेकर 1,80,000 के बीच स्वास्थ्य कर्मियों व देखभाल कर्मियों की मौत हो जाने का अनुमान है। संगठन का साथ ही ये भी कहना है कि मौत का शिकार हुए इन लोगों की असली संख्या इस आंकड़े से लगभग 60% ज़्यादा होने की आशंका है। WHO और महामारी का खात्मा करने के लिए काम कर रहे वैश्विक साझीदारों ने बेहतर संरक्षण की ज़रूरत को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत कर्मियों की हिफाजत के लिए ठोस कार्रवाई किए जाने की पुकार भी लगाई है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने जिनीवा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोहराया कि हर एक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ उसमें काम करने वाले लोग हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी और उसके साझीदार संगठनों ने दुनिया भर में नेतृत्वकर्ताओं और नीति निर्माताओं से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन की उपलब्धता हो। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने भारत में कोविड 19 की वैक्सीन के टीकाकरण मुहिम के तहत लोगों को दी गई खुराकों की संख्या 1 अरब होने पर बधाई दी है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए UN एजेंसी की क्षेत्रीय निदेशक ने कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में इसे एक अहम पड़ाव करार दिया है। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2 वैक्सीनों को स्वीकृति देने के बाद इस वर्ष 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इनमें से एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और दूसरी कोवैक्सीन भारत में ही निर्मित है। गुरुवार को भारत सरकार ने बताया कि देश में लोगों को अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन के 1 अरब यानी 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। UN की विभिन्न एजेंसियों ने भारत में राज्य और जिला स्तर पर कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। इन प्रयासों के तहत देश भर में टीकाकरण सत्रों की निगरानी के लिए समर्थन के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण और योजना के लिए तैयारियों को भी पुख्ता बनाया गया। UN स्वास्थ्य एजेंसी में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा इतने कम समय में पार करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि देशों व समाजों में निर्धनता और विशेषाधिकार के दुष्चक्र जारी हैं, मगर रोकथाम प्रयासों के जरिए वे मौजूदा प्रतिमानों में बदलाव करके और असलियत में समानता सुनिश्चित करके इन चक्रों को तोड़ा जा सकता है। कुछ और जानकारी सुनिए प्रतिष्ठा जैन से।
अत्यधिक निर्धनता और मानवाधिकारों पर UN के विशेष रिपोर्टर ओलिवियर दे शटर ने बुधवार को UN महासभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने सचेत किया कि राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ गरीबी उन्मूलन संभव है। इसके लिए बचपन में जल्द निवेश, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, युवा वयस्कों के लिए एक बुनियादी आय और भेदभाव के अंत जैसे उपाय अपनाए जाने होंगे। रिपोर्ट दर्शाती है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के धनी देशों में निम्न आय वाले घरों में बच्चों को अपने देश में औसत आय तक पहुँचने के लिए 4 से 5 पीढ़ियों का समय लगता है, मगर ब्राजील, कोलंबिया या दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह हासिल करने में 9 या उससे भी ज्यादा पीढ़ियों का समय लग सकता है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने UN दिवस के मौके पर कहा है कि UN चार्टर के संस्थापक मूल्य यानी शांति, विकास और मानवाधिकार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। गौरतलब है कि 1945 में UN चार्टर लागू होने के उपलक्ष्य में हर साल UN दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष UN दिवस के मौके पर गुरुवार 21 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में एक विशेष संगीत समारोह यानी कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है। इस कॉन्सर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि UN दिवस में एकजुटता और कार्रवाई की जो भावना नजर आती है वो संगीत की ताकत में बेहतरीन रूप में अभिव्यक्त होती है। तो आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।